खुदावंद का इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे और खुदावंद का शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए और खासकर उसके लिखे हुए कलाम के लिए जिसे तहरीरी मकाशफा भी कहा गया है, तहरीरी अलहाम भी कहा गया है। खुदा का शुक्र करेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, क्योंकि जिंदगी के किसी ना किसी सफर में घर बनाने के लिए हमें नक्शे की जरूरत है, सफर में जाने के लिए हमें नक्शे की जरूरत है, किसी भी चीज की तलाश करने के लिए हमें किसी ना किसी औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे जिंदगी को गुजारने के लिए बेटा अपने बाप से सीखता है कि वो किस तरह एक अच्छा बाप या अच्छा भाई या अच्छा बेटा या फिर अच्छा शहरी बन सके, वैसे ही हमें खुदा की बातों को सीखने, यीशु मसीह की समझ को समझने के लिए, यीशु मसीह की अकल से, यीशु मसीह की मोहब्बत से, यीशु मसीह के उन वाकया से वाकिफ होने के लिए खुदा ने अपना कलाम बख्शा। और इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि हर एक सहीफा यानी कि हर एक बात, हर एक शोशा, हर एक नुक्ता, कहता है हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, अलहाम से यानी कि खुदा के मुकाशफा से, खुदा की सांस, खुदा का फूका हुआ कलाम, बोला हुआ कलाम, हमारी तरबियत, नसीहत और हमारी तरक्की के लिए है, ताकि हम सब क्या बने, कामल बने, पुख्ता हो जाएं, कायम हो जाएं, मजबूत हो जाएं, इतने मजबूत कि जैसे कहते हैं कि जब किसी का खून मीठा हो जाए या उसमें कोई बीमारी लग जाए तो जोकें लगाते हैं, तो ऐसे चिंबड़ जाती है जब तक वो खून चूस के खत्म ना कर दे वो उतरती नहीं। हमें यीशु मसीह के साथ उससे भी कहीं ज्यादा लिपटे रहने की जरूरत है, उससे भी कहीं ज्यादा जुड़े रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों में हमने यही बात सीखी थी कि यीशु मसीह ने कहा वो ही फल लाएगा जो मुझ में कायम रहेगा, उसी की दिल की मुरादों को मैं पूरा करूंगा जो मुझ में मसरूर रहेगा। इसीलिए जबूर सैंती कहता है कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। आए हम खुदा के हुजूर झुके और उसके हिकमत और दनाई वाले कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए जो वाक्या हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें से सीखने वाले बने। हम सब दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरा कलाम सच्चाई है, तेरा कलाम हकीकत है, तेरा कलाम इख्तियार रखता है, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम हौसला देता है, तेरा कलाम हमारी अकलों को रोशन करता है और तेरा कलाम सबूत के साथ सच्चा ठहरता है। सो आज हम जो कुछ भी खुदा बाप सीखें, यीशु मसीह के नाम में, खुदा पाक रूह की कुदरत में, उसकी रहनुमाई में सीखें और खुदावंद हम सब तेरे जलाल, तेरी गुवाही के लिए जमीन पर इकट्ठे हैं और हमें कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में, आमीन। आज हम जो वाक्या पढ़ेंगे ये सातवां वाक्या है, जैसे हमने एतवार की इबादत में भी इस वाक्या पर गौर की थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वाक्या पर थोड़ा सा और करीब होकर गौर करें। यह वाक्या जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, सातवां वाक्या है जो यीशु मसीह अपने शिगिर्दों पर जाहिर हुआ है, उन्हें दिखाई दिया है, उन्हें नजर आया है। और ये वाक्या हम यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। और ये मुकम्मल वाक्या पूरे बाब में है। जब हम असली जबान में, यूनानी जबान में बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर ये पूरा बाब एक बात चल रही है। असली जबान में हमें को, हम सबको आयतें नहीं मिलती, असली जबान में बाप नहीं लिखे हुए, वहां पर पूरी एक बात लिखी हुई है जो बात चल रही है। کہ اس دن یسوع مسیح نے یہ بات کی، اس وقت یہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا۔ سو ہمیں بائبل مقدس میں باپ اور آیات اس لیے درج کی گئی ہیں ہمارے لیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم کون سے باپ میں ہیں اور کون سی آیت پڑھ رہے ہیں۔ سو 21واں باپ اس کی پہلی آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا، شمعون پطرس اور توما جو تمام کہلاتا ہے اور ناتنئیل جو گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوا مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ یہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد ہیں جن میں پطرس ہے، جس میں توما ہے، جس میں ناتنیل ہے، اور پھر اس کے ساتھ اور دو شاگرد ہیں جن کا نام درج نہیں کیا گیا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آگے چل کر کہ ایک ان میں سے کون ہے، یوحنا ہے جس نے یہ باتیں لکھی ہیں، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی ہے، کیونکہ وہی یسوع مسیح کے سینے پر سر رکھ کے سہارا لیتا ہے اور پھر یسوع مسیح اسے بتاتا ہے کہ پطرس میں اسے عزیز رکھتا ہوں۔ سو یہاں پر وہ سات شاگرد ہیں جن پر یسوع مسیح ظاہر ہوا جب وہ مچھلی پھڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ شاگردوں کو جب یسوع مسیح نے پکڑا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اور یہاں پر شاگردوں کا جو حال یا دل ایسا ہے کہ وہ بدظن ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا گول جو مقصد ہے اسے بھول کر اپنے کاروبار کی طرف پھر لوٹ گئے ہیں۔ کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، لیکن وہ پھر مچھلی گیر بن رہے ہیں، مچھیرے بن رہے ہیں، پھر وہ اپنے کاروبار کو لوٹ گئے۔ اور کیا کیا، پطرس سوار ہوا کشتی پر، ساری رات جال لگا کر بیٹھا رہا، لیکن کچھ بھی نہ پکڑا، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جال لگایا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کنڈیاں لگائیں، کیونکہ یہاں پر جال کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جال لگایا، اگر آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ اور چوتھی آیت، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ یسوع مسیح پر ظاہر ہوا، وہ نہیں جانتے کہ یہ واقعہ یسوع مسیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ چھٹی آیت، اس نے ان سے کہا، کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ یسوع مسیح کی بات ماننے پر کیا ہوا کہ وہ جو ساری رات کھپتے رہے، ساری رات محنت کرتے رہے، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں پکڑ سکے۔ لیکن یسوع مسیح نے ایک ہی بار کہا، کہتے ہی کیا ہوا کہ داہنی طرف ڈالو۔ سادہ سی بات، کھبی طرف سے ہٹ کر داہنی طرف، ایسے۔ تو کیا ہوا، اتنا جال بھر گیا کہ مچھلیوں کی کثرت تھی، کثرت کے ساتھ۔ اور یسوع مسیح جو دلوں کا جاننے والا ہے، یسوع مسیح جس کے کہنے سے کائنات وجود میں آئی ہے، جس نے ہر ایک چیز پر کیا ہے، اختیار حاصل ہے۔ اور یہاں پر جو جال میں مچھلیاں پھنسی ہیں، جو بہت بڑی مچھلیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پونگے نہیں ہیں، بڑی مچھلیاں ہیں، 153 مچھلیاں ہیں، آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ اور ان مچھلیوں نے، جو اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کا جال نہیں پھاڑا، بلکہ بڑے آرام سے اس جال میں بیٹھی ہے، کیونکہ کائنات کے بادشاہ نے اپنا جلال ظاہر کرنا ہے۔ जैसे यूना नबी के टाइम में हुआ। यूना नबी जब खुदा से भाग रहा था तो खुदा ने अपना करिश्मा दिखाना था, अपना मौजजा दिखाना था, तो उसने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि जाकर इस बंदे को तू निगलेगी, वो 3 दिन तेरे पेट में रहेगा और फिर तू उसे नैनुआ शहर के उस किनारे पर फेंकेगी ताकि वो जाकर मनादी करे। ऐसा ही आगे होगा। ये शिगिर्द जो दिलगीर हो चुके हैं, शिगिर्द जो डरे हुए हैं, शिगिर्द जो अपने अपने कारोबार को लौट गए, हो सकता कहते हो कि यीशु मसीह अपने दिलों में ये मुश्किल है कि तेरी खिदमत करें, क्योंकि अभी उन्होंने इन 1-2 हफ्ते के दौरान जो मुसीबत, जो दुखों, जो मुसीबतों का सामना किया है वो बयान से बाहर है। तो उन्होंने अपने अपने कारोबार को लौटना चाहा। और 7वीं आयत में क्या लिखा है, इसलिए उस शिगिर ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। पास शमौन पतरस ने यह सुनकर के खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यहां पर ये और शिगिर्द जिसकी हम शिनाख्त कर सकते, ये कौन है? यूहन्ना। ये कौन है? यूहन्ना। इसका हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं? जब मैंने आपको कहा कि यूनानी जुबान में पढ़ते हैं तो वहां पर हम आगे पीछे को देखकर उसी में जवाब को ढूंढते हैं, और इसका जवाब हमें आगे ही इसी बाब के हमें आखिरले हिस्से में मिल सकता है कि जिससे यीशु मसीह मोहब्बत रखता था वो कौन है? यूहन्ना है। और फिर आगे चलकर देख सकते हैं कि ये वही यूहन्ना है जिसने ये यूहन्ना की अंजील लिखी। 8वीं आयत, और बाकी शिगिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। यानी कि 200 हाथ का फासला लगाएं कितना सा हो सकता है? इससे यहां से हम वो नुक्कर लगा सकते हैं बाहर गली वाली। तो इतनी दूर एक दूसरे से हैं, जाल भरा हुआ है, तो वो लेकर आ रहे हैं। और 9वीं आयत में क्या लिखा है, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ, उनमें से कुछ लाओ। मौजदा जब होता है तो उसमें खुदा का हाथ शामिल होता है, लेकिन वो चाहता है कि कोई आगे बढ़े, कोई उस पर काम करे। मिसाल के तौर पर शिगिर्दों को हुक्म दिया कि यहां पर फेंको। जब भी हुक्म माना जाता है तो क्या होती है? उसकी बरकत मिलती है। अगर आप अपने बच्चे को कहें कि ये बिजली का बोट है, इसे हाथ ना लगाओ, तो क्या होगा? बच्चा उस करंट से बच जाएगा। तो क्या हुआ? सेहतमंदी, हफाजत और तंदुरुस्ती। अगर वो बिजली को हाथ लगाता तो क्या होता नतीजा? डॉक्टर के पास जाना पड़ता, बच्चे को मिट्टी में रोलना पड़ता, जैसे बहुत दफा करते हैं कि इसके बदन से मिट्टी निकालनी है, उसे रेत पर रगड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत से काम करते हैं। तो नाफरमानी का नतीजा नुकसान, फरमाबरदारी का नतीजा बरकत। उन्होंने बात मानी, बात सुनी, तो क्या हुआ कि मछलियों का जाल भरा हुआ खींच लाए। और 11वीं आयत में क्या लिखा है, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर, 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यहां पर छोटी सी मछली नहर पर पकड़ने चले जाएं तो वो तड़पती है इतना कि आपकी कुंडी को तोड़ने की कोशिश करेगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि खुदा ने उन मछलियों को हुक्म दिया कि मैं अपने टूटे हुए शिगिर्दों के टूटे हुए दिल और हौसले को बुलंद करना चाहता हूं इन्हें, इसलिए तुमको हुक्म देता हूं कि चलो जाल में। और जाल भरा हुआ है 153 मछलियां। हम नहीं जानते कि वो बाबर जैसी बड़ी मछली है और काशी जैसी बड़ी मछली है। हमें साइज का नहीं पता लेकिन बड़ी मछली कहा गया है। आ गई और क्या हुआ? 12वीं आयत में यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो, और शिगिर्दों में से किसी को जरूरत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इस तरह मछलियां भी दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शिगिर्दों पर जाहिर हुआ। इसी बाप में तीसरी बार, तीन बार यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ। पहली बार जब हम 19वीं आयत में देखे हैं, वो यहूदियों से डरे हुए बैठे थे। दूसरी बार 8 दिन के बाद जब तोमा वहां पर मौजूद नहीं था, तो तोमा के शक को दूर करने के लिए यीशु मसीह जाहिर हुआ। और ये तीसरा वाक्य है 7 शिगिर्दों पर यीशु मसीह जाहिर हुआ। और जाहिर होने के साथ यीशु मसीह ने क्या कहा है? यीशु मसीह यहां पर बात करेगा पतरस से कि पतरस तू दिलगीर है, तू जो दिल तोड़े बैठा है, तू जो अपनी उम्मीद छोड़े बैठा है, तू जो अपना हौसला छोड़े बैठा है, अब मैं तुझसे सवाल करता हूं। यहां पर पतरस से यीशु मसीह सवाल करता है और 15वीं आयत में लिखा है, जब खाना खा चुका तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? आज आपके लिए भी सवाल है कि यीशु मसीह करता है सवाल, मेरे बेटों और मेरी बेटियों, क्या तुम इस दुनिया के लोगों से, इस दुनिया की चीजों से, इस दुनिया की ऐशो इशरत से, इस दुनिया के झूठों से, इस दुनिया के माबूदों से, इस दुनिया के बुतों से, इस दुनिया के कामों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखते हो कि नहीं? तो आगे यीशु मसीह का बंदा पतरस क्या कहता है? उसने यानी पतरस ने उससे कहा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह से, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। तो मेरे बर्रे चरा, यहां पर बर्रे यानी के नए ईमानदार जो अभी पैदा हुए हैं, जिन्होंने पैदा होना है, जिन्होंने मुझे कबूल करना है, उनकी निगाहबानी कर। फिर आगे 16वीं आयत में उसने दोबारा उससे फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। यीशु मसीह से उसने फिर कहा, हां मैं तुझे अजीज रखता हूं, तुझसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। तो यीशु मसीह यहां पर सबूत मांगेगा। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, जब हम मां बाप, बहन भाई एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो उसका इजहार क्या होता है? मोहब्बत का इजहार किसी ना किसी चीज से किया जाता है। बाप बेटे को कहता है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर स्कूल की किताबों का कहे तो लेके ना दे तो बच्चा क्या कहेगा? ये मोहब्बत है? नहीं। जब स्कूल की किताबों को लेके देगा बाप, तो वो कहेगा कि वाकई ही मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत का सबूत क्या है? जब बच्चा गलत राह पर जा रहा होगा तो बाप उसे झिड़केगा, तो बच्चे को पता होगा कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता है, उसने मुझे बिगड़ने नहीं दिया बल्कि दुरुस्त राह पर लगाया। इसी तरह 17वीं आयत में उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ें चरा। तीन बार यीशु मसीह ने कहा। और इसीलिए पतरस को यरूशलम में क्या कहा गया? भड़ा चरवाहा कहा गया। और पतरस को ये ओहदा मिला कि वो निगाहबान बने, वो पादरी की खिदमत करे, बिशप की खिदमत करे। اسی طرح ہم سب کو بھی خدا نے کوئی نہ کوئی خدمت، کوئی نہ کوئی عہدہ دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کریں، خدا سے محبت کریں. آئے ہم خدا کے حضور جھکیں. یہ وہ ساتواں واقعہ تھا ان سات شاگردوں پر یسوع مسیح کا ظاہر ہونے کا. اس لیے ظاہر ہوا کہ اپنی قدرت سے ان کو ظاہر کرے کہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ تک ساتھ رہوں گا. اسی طرح یسوع مسیح بھی آپ کے ساتھ ہے. بے شک ہم بے وفا ہو جائیں، بے شک ہم اپنا دل دماغ اس سے بدل لیں، لیکن وہ ہم سے کبھی بھی بدلی نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتا. آئے ہم دعا کریں. خدا باپ، آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، ان تمام واقعات کے لیے جو تُو نے لکھے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں. آئی ہوئی تمام کلیسیا کے لیے تُس سے برکت چاہتے ہیں. چھو، بڑی برکت دے. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین.